सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवर्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारम् विविह हि आरम परो वेमो। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंड आगम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है। अभी हम पृष्ठ संख्या 74 पर आ गए हैं। ये अभी जघन्य महादंडक हम देख रहे हैं 64 पदों वाला। उसमें हमने मनुष्य गति तक बात देखी थी, देवगति तक एक्चुअली उसका स्पष्टीकरण देखना है। 166 नंबर का सूत्र पढ़ा था कि उससे यानी मनुष्य गति से देवगति अनंत गुण यानी उसका अनुभाग अनंत गुणा है। यद्यपि इसका जघन्य बंध उद्ध बराबर करना, देवगति का जघन्य बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से युक्त, हमने परिवर्तमान का अर्थ पहले देखा था, वह लौट कर वापस उसी परिणामों में आता है तो उसको परिवर्तमान करते हैं दो तीन समय आदि में, तो ऐसे मध्यम परिणामों से युक्त असंगी पंचेंद्रियों के होता है, तो भी मनुष्य गति की अपेक्षा देवगति अनंत गुणी है। यानी देवगति का अनुभाग जघन्य कौन बनता बांधता है, तो असंगी पंचेंद्रिय देवगति अनंत गुणी है, क्योंकि एकेंद्रिय के परिवर्तमान मध्यम परिणामों की अपेक्षा असंगी पंचेंद्रिय के परिवर्तमान मध्यम परिणाम अनंत गुणे देखे जाते हैं। ये एकेंद्रिय को क्यों बीच में लाया, हाँ मनुष्य गति बांधते ना, मनुष्य गति की अपेक्षा देवगति अनंत गुणी जो बताई है, तो मनुष्य गति को बांधने वाले कौन है, जघन्य की बात चल रही है यहाँ, एक इंद्रिय जो बांधेंगे, और देवगति जघन्य अनुभाग वाली कौन बांधता है, तो असंगी बांधते हैं। तो कहते एक इंद्रियों के जो परिवर्तमान मध्यम परिणाम है, आयुबंध के अपेक्षा से वो लिया है, उसकी अपेक्षा ये असंगी पंचेंद्रियों के मध्यम परिणाम जो है वो अनंत गुणे देखे जाते हैं। आगे नीचा गोदानम अनंत गुणम, उससे नीच गोत्र अनंत गुणा है। हम नंबर डालते तेज 49 नंबर आ गए ना यहाँ पर। यद्यपि सर्व विशुद्ध परिणाम वाले सातवीं पृथ्वी के नारकियों में इसका जघन्य बंध होता है, तो भी देवगति की अपेक्षा नीच गोत्र अनंत गुणा है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। हर एक के अपने अपने अनुभाग जो है, अविभाग प्रतिच्छेद है, उसकी संख्या की अपेक्षा से बात बताएंगे। ओ जैसे कीर्ति अनंत गुणा, उससे ओ यश कीर्ति अनंत गुणी है, क्योंकि वह सर्व विशुद्ध प्रमत्त संयत जीव के द्वारा बांधी गई है। अयश कीर्ति के बंध की विच्छित्ति कहां पर है, छठे में है, तो छठे वाला जो असंयत सॉरी छठे वाला जो अयशस कीर्ति को बंधेगा, उसका अनुभाग कम बंधेगा, उसे अशुभ प्रकृति है ना, तो कम बंधेगा, वो यशक कृति बांधते तो वो बहुत अनुभव वाली बांधेगी, उसकी बात नहीं है। उसके आगे 169 असादा वेदनीयम अनंत गुणम, उससे असाता वेदनीय अनंत गुणी है, यद्यपि इसका जघन्य बंध, इसके भी बंध की विच्छित्ति कहाँ पर है, छठे में, यद्यपि इसका जघन्य बंध प्रमत्त संयत के ही होता है, तो भी उससे इसका अनुभाग प्रकृति विशेष होने से अनंत गुणा है। दोनों की एक साथ बंध विच्छित्ति होती है, प्रमत्त संयत उसको बांधते हैं, फिर भी दोनों के अनुभाग में अनंत गुणा का डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग प्रकृति है, वो प्रकृति का अपना स्वभाव होता है। जसकित्ति उच्चा गोदम च दो भी तुल्लाणी अनंत गुणानी, उससे यशक कीर्ति और उच्च गोत्र दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणे हैं। अब यहाँ कहाँ कौन सी बात लें, कहाँ पर लेना इसका बंध, दसवें गुणस्थान में तो उसका उत्कृष्ट बंध होगा हमको जघन्य में। अभी ये शुभ प्रकृति है तो इसका जघन्य बंध तो संकलेश वाला करेगा, उल्टा लेना है ना इसको। देखो क्या कहते, यद्यपि अति तीव्र संकलेश युक्त पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीवों में इन दोनों ही प्रकृतियों का जघन्य बंध होता है, तो भी असाता वेदनी की अपेक्षा इनका अनुभाग अनंत गुणा है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के बहुत अनुभाग बंध का अपसरण नहीं होता, यानी उसका अनुभाग उतना अधिक ही रहता है। यानी भले ये तीव्र संकलेश युक्त पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि बांधता है, और वहां पर हमने असाता वेदनी को जघन्य वाला देखा था, वो प्रमत्त संयत बांध रहे हैं, उसके आगे सादा वेदनीयम अनंत गुणम, उनसे साता वेदनीय अनंत गुणी है, इसका भी जघन्य अनुभाग लेना है ना। उत्कृष्ट अनुभाग तो हमने देखा था, कहां पर थे, बंध की अपेक्षा लेना है, साता वेदनीय तेरवे में बनता है, परंतु वहां अनुभाग बंध नहीं है। दसवें के अंत में जहां कषाय है ना सूक्ष्म लोक, वहां देखो उनसे साता वेदनी अनंत गुणी। अभी यहां कौन से वाले लेने हैं, जघन्य, साता वेदनीय का जघन्य बंध लेना है, तो अभी संकलेश वालों को लेंगे। इसके भी जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी सर्व संकलिष्ट मिथ्यादृष्टि जीव ही है, किंतु प्रकृति विशेष होने से वह उक्त दोनों प्रकृतियों से अनंत गुणी है। ऊपर जो हमने यशकीर्ति उच्च गोत्र देखा था उससे ये अनंत गुणी है। हाँ हाँ, ये ऊपर जो बताया तीव्र संकलेश युक्त पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि, अति तीव्र लिखा हूं उसमें तो। निरयाउम अनंत गुणम, उससे नारकायु अनंत गुणी है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। देवायुम अनंत गुणम, उससे देवायु अनंत गुणी है, इसका कारण सुगम है। आहार शरीरम अनंत गुणम, उससे आहारक शरीर अनंत गुणा है, ये शरीर यानी यह नाम कर्म की बात है, क्योंकि वह तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त अप्रमत्त संयत जीव के द्वारा बांधा गया है। आपका प्रश्न मेरे ख्याल में आया, अश्विन भाई कहते वो आठवें में भी बनता है, तो ये अप्रमत्त वाले को क्यों लिया, जघन्य लेना है ना, जघन्य बंध देख रहे हैं हमको। उत्कृष्ट बंध कौन करेगा, आहार का आठवें गुणस्थान के छठे भाग के अंत समय वाला। अब आहारक को जघन्य बांधने वाला कौन है, बांधने वाले दो ही तो है ना, सातवां और आठवां गुणस्थान वाला, तो उसमें तत्प्रायोग्य विशुद्धि कहा, तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त अप्रमत्त संयत जीव के द्वारा बांधा गया है। इस प्रकार 64 पद वाला जघन्य परस्थान अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। एक दूसरे के साथ उसका क्या संबंध है वो बता दिया। हमने स्वस्थान में अपनी अपनी प्रकृतियों का देखा था, वो तो हमने स्वस्थान में कौन सा देखा था, उत्कृष्ट देखा था। अब यहाँ स्वस्थान में जघन्य देखाएंगे। अब इससे सूचित होने वाले स्वस्थान अल्प बहुत्व को कहते हैं, यानी स्वस्थान जघन्य को कहेंगे यहाँ पर, यानी ज्ञानावरणीय पांचों में लगाएंगे। अभी किसका अनुभाग जघन्य है, जघन्य में नंबर लगाएंगे। मनःपर्य ज्ञानावरणीय सर्वमंद अनुभाग से युक्त है, उसके बाद नंबर है उससे अवधि ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है, उससे श्रुत ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है, उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है, और उससे केवल ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है। इसमें तो कुछ अपना चला नहीं है ना, जो जिसका अनुभाग है वो बताते हैं। अब दर्शनावरणी में अवधि दर्शनावरणीय सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे अचक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणा है, उससे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुण है। गुणों झाले, गुणा करना। उससे केवल, केकल हुआ, उससे केवल दर्शनावरणी अनंत गुणा है, उससे प्रचला अनंत गुणी है, उससे निद्रा अनंत गुणी है, उससे निद्रा अनंत गुणी है। अनुभाग जघन्य अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग में हमने पहले किसको नंबर लिया था, स्त्यान वृद्धि, उससे नीचे निद्रा पहले लिया था। हाँ, हमेशा कहते ना स्त्यान वृद्धि निद्रा प्रचला निकालो। हाँ, ये हमने जो उत्कृष्ट वाला देखा था पहले, हाँ 60 पेज पर देखो, स्त्यान वृद्धि बीच में ना, फिर निद्रा फिर प्रचला फिर निद्रा और फिर प्रचला, यानी प्रचला का नंबर जघन्य की ओर पहले लिया था। ऐसे यहाँ देखो, पहले प्रचला फिर निद्रा, अब यहाँ उनकी अपेक्षा से प्रचला जैसे उत्कृष्ट में नंबर प्रचला का आ जाता है, यहाँ निद्रा का पहले आया, 8वें नंबर पर उससे प्रचला अनंत गुणी है, और 9वे नंबर पर उससे स्त्यान वृद्धि अनंत गुणी है। अब साता असाता में, असाता वेदनीय सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे साता वेदनीय अनंत गुणा है। मोहनीय में लगाएंगे। संज्वलन लोभ सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे संज्वलन, स के ऊपर बिंदी दे दो, संज्वलन माया। अब ये सूक्ष्म कृष्टि हुई है ना, इसलिए जघन्य वाले का ऐसा नंबर लगता है। उससे संज्वलन माया अनंत गुणी है, उससे संज्वलन मान अनंत गुणा है, उससे संज्वलन, यहाँ भी स के ऊपर बिंदी लगाना, संज्वलन क्रोध अनंत गुणा है। यहाँ फुल स्टॉप भी देना। उससे पुरुष वेद अनंत गुणा है, क्या 5 नंबर, हाँ उससे हास्य अनंत गुणा है, उससे रति अनंत गुणी है, उससे जुगुप्सा अनंत गुणी है, उससे भय अनंत गुणा है, उससे शोक अनंत गुणा है, उससे अरति अनंत गुणी है, उससे स्त्री वेद अनंत गुणा है, उससे नपुसक वेद अनंत गुणा है, उससे प्रत्याख्यानावरण मान अनंत गुणा है, उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध। अभी मान को पहले नंबर लिया क्योंकि ये संसार अवस्था में जब तक पूर्व स्पर्धक है तो यही ऐसा क्रम होगा उसका, प्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष अधिक है, फिर उससे प्रत्याख्यानावरण माया विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण लोभ विशेष अधिक है। अब अप्रत्याख्यानावरण करना, उससे अप्रत्याख्यानावरण मान अनंत गुणा है, उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष अधिक है, उससे अप्रत्याख्यानावरण माया विशेष अधिक है, और उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ विशेष अधिक है। अब अनंतानुबंधी, उससे अनंतानुबंधी मान अनंत गुणा है। एक ही कषाय के जब क्रोध मान माया लोभ की बात है ना, पहले लोभ फिर ये पहले उल्टा है ना, मान फिर क्रोध फिर माया फिर लोभ, वो विशेष अधिक विशेष अधिक, और एक कषाय चौकड़ी से दूसरे में चले जाएंगे तो अनंत गुणा हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी मान अनंत गुणा है, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी माया विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी लोभ विशेष अधिक है, और सबका राजा उससे मिथ्यात्व अनंत गुणा है। 26 हुए, ये बंद की अपेक्षा है इसलिए 26 ही प्रकृतियां। किसको छोड़ा? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को छोड़ दिया है, क्योंकि वे बंधने वाली प्रकृति है नहीं, बाद में तैयार होती है मिथ्यात्व में से। अब 77 पृष्ठ आयु में लगाते हैं। तिर्यक आयु सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे मनुष्यायु अनंत गुणी है, उससे नारकायु अनंत गुणी है, और उससे देवायु अनंत गुणी है। अब नाम कर्मों पर लगाते हैं। तिर्यक गति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे नरक गति अनंत गुणी है, उससे मनुष्य गति अनंत गुणी है, और उससे देवगति अनंत गुणी है। ये शुभ है अशुभ है वो अपने अपने उसके अविभाग प्रतिच्छेद नाप रहे, जघन्य में जघन्य कितने हैं उसका ये नंबर चल रहा। नरगति और आयु क्या उल्टा। अब जाति में लगा है। आयु में 3 शुभ है, परंतु वो शुभ हो या अशुभ हो अनुभाग कितना है उसकी अपेक्षा बात चल रही है, और वो भी जघन्य अनुभाग की अपेक्षा। जाति में चतुर इंद्रिय जाति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे 3 इंद्रिय जाति अनंत गुणी है, उससे 2 इंद्रिय जाति अनंत गुणी है, उससे 1 इंद्रिय जाति अनंत गुणी है, और उससे 5 इंद्रिय जाति अनंत गुणी है। शरीर में, शरीर का अर्थ होता है शरीर नाम कर्म। औदारिक शरीर सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे वैक्रियक शरीर अनंत गुणा है, उससे तेजस शरीर अनंत गुणा है, उससे कारमान शरीर अनंत गुणा है, और उससे आहारक शरीर अनंत गुणा है। अब संस्थानों में लगाते हैं। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे स्वाति संस्थान अनंत गुणा है, उससे कुब्जक संस्थान अनंत गुणा है, उससे वामन संस्थान अनंत गुणा है, उससे हुंडक संस्थान अनंत गुणा, अनंत गुणा है, हुडक हुआ है, हुंडक करना, हुंडक हु के ऊपर बिंदी लगाना है आपने, हाँ, उससे सम करना मस हुआ है, सम चतुरस्र संस्थान अनंत गुणा है, अंगोपांग की बात है। औदारिक शरीर अंगोपांग सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे वैक्रिक शरीर अंगोपांग अनंत गुणा है, और उससे आहारक शरीर अंगोपांग अनंत गुना है। देखो तेजस और कारमान शरीरों को अंगोपांग नहीं होते, तो वैसा नामकर्म भी नहीं होता उनका। सहनन की बात है, सहननों के अल्प बहुत्व की प्ररूपना संस्थानों के समान है। संस्थानों पे यहाँ कैसा नंबर लिया है, जो दो नंबर का संस्थान है वहाँ क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 नाम दिए ना, नेग्रोस से शुरू किया था और लास्ट में वो समचतुर से रखा, वैसे यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, वज्र नाराज से। वज्र ऋषभ को छोड़ देना, नहीं नेग्रोस से शुरू किया था, यहाँ सेकंड नंबर का संस्थान पहले लिया था, फिर क्रम से छठे तक वो इन्हें उसको 5 नंबर दिए थे और बाद में वो प्रशस्त वाला पहला लिखा था। यानी जो अप्रशस्त 5 है ना, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लगाओ, लिखना है, अच्छा लिखे तो एक नंबर पर क्या लिखेंगे, वज्र नाराज, उसके बाद नाराज, 2 नंबर पर नाराज, 3 नंबर पर अर्ध नाराज, 4 नंबर पर कीलित, हाँ देखो वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्ता स्रूपाटिका, यानी उसका नाम है असंप्राप्त अस्रूपाटिका, और फिर छठे नंबर पर अभी वो रखना है वज्र ऋषभ नाराज। ये 6 नाम तो हमें याद है ना, हमें केवल उसके ऑर्डर देखनी है, दूसरे से छठे तक को लेना है 1, 2, 3, 4, 5 पर, और पहले को रखना है छठे स्थान पर। तो ये हो गई सहननों की प्ररूपना। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, वर्ण दिख रहे हैं, वर्ग दिख रहा है ना, वो कुछ दिख रही नहीं, च भी नहीं दिख रहा है बराबर। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क सर्वमंद अनुभाग से सहित है और उससे प्रशस्त वर्ण आदि चतुष्क अनंत गुणा है। अप्रशस्तों को पहले रखा, प्रशस्तों को सेकंड नंबर पर। जिस प्रकार गति के अल्प बहुत्व की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार अनुपूर्वी के अल्प बहुत्व की प्ररूपना करनी चाहिए। पहले गति में किसको लिया था, तिर्य गति को लिया था, नर गति, मनुष्य गति, फिर देव गति, अनुपूर्वियों का भी क्रम ऐसा ही होगा। उपघात सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे परघात अनंत गुणा है। ये उपघात और परघात में अप्रशस्त कौन सी है, प्रशस्त कौन सी है, के दोनों अप्रशस्त है, के दोनों प्रशस्त है, हाँ दोनों प्रशस्त है, हाँ मालूम नहीं, हाँ और उपघात, अरे कुछ तो हो सकता है ना उपघात अप्रशस्त है, परघात प्रशस्त है, बाकी सभी अग्र लघु परघात उच्छ्वास वो सब प्रशस्त है। उससे उच्छ्वास अनंत गुणा है, उससे अग्र लघु अनंत गुणा है। ये 4 को हम एक साथ हमेशा कहते हैं ना, इसलिए वो 4 में नंबरिंग किया। अब विहायोगति में अप्रशस्त विहायोगति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे प्रशस्त विहायोगति अनंत गुणा है। ये इनके बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है मालूम है, अप्रशस्त विहायोगति की, हाँ दूसरे में बंध की विच्छित्ति, अप्रशस्त की दूसरे में और प्रशस्त की बंध 8वें में, और उदय किसका? दोनों का तेरा, दोनों का तेरा। त्रसादिक दस युगलों के अल्प बहुत्व की प्ररूपना साता व असाता वेदिनी के समान है। जैसे हमने असाता को पहला नंबर दिया, साता को अनंत गुना का, वैसे इनमें जोड़ी जोड़ी ने त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, इसमें से वो जो दो नंबर पर हमने कहे हैं वो अप्रशस्त, उसको पहला नहीं है, फिर इसको दूसरे स्थान पर अनंत गुणा वाला। ये तो चार जोड़ी हुई, और कौन सी है छह जोड़ी? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, और यश। यश कीर्ति क्यों उन्होंने अलग से बताया है? कोई यहीं पर ले लेना उसको, यश कीर्ति की बात आई होगी ना? नहीं, ये इसमें तो स्वस्थान चल रहा है, सॉरी, स्वस्थान में तो यहीं पर आएगा, जो हमने परस्थान में तो अलग अलग जगह पर आया था उसको। तो ये दस जोड़ी हो गई। अब गोत्र कर्म में नीच गोत्र सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे उच्च गोत्र अनंत गुणा है। अंतराय में दानांतराय सर्वमंद अनुभाग से सहित है, इस प्रकार परिपाटी क्रम से आगे की चार अंतराय प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, उसी क्रम से। हम कितनी बार हम विशिष्ट क्रम से क्यों याद करते हैं? उसके पीछे ऐसा कोई रहस्य है? यहाँ अनुभाग की अपेक्षा वो अनंत गुणी अनंत गुणी है। इस प्रकार जघन्य स्वस्थान अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अब यहां से आगे चूलिका को कहते हैं, यानी अनुभाग में जघन्य बता दिया उत्कृष्ट। पहले तो हमने पदमी मौंसा देखी, फिर स्वामित्व देखा, और यहाँ अल्प बहुत्व देख लिया। अब चूलिका चलेगी। गाथा ही है। समप्तुपत्ति विय सावय विरदे अनंत कम्मंसे दंसन मोह खवये कसाय उवसामये उवसंते खवये अखीण मोहे जिनेय नियमा भवे असंखे चा तव विवरीदो कालो संखे जगुणाए सेड़िए। ये सुनकर कुछ याद आया? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, दर्शन मो उपशमक शपक, वो ऐसे ऐसे। दस दस या अकरा, जिन जिन में दो प्रकार करते तो ग्यारह होते हैं, और ये दस जो स्थान है वो असंख्यात गुणा श्रेणी वाले स्थान है, गुण श्रेणी की अपेक्षा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा वाले स्थान है ये। अब यहाँ नीचे पढ़ेंगे हम। सम्यक तोत्पत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि, असंख्यात गुणा निर्जरा को मिथ्या दृष्टि को लिया। क्या मिथ्या दृष्टि में भी निर्जरा होती है? हाँ बोलो ना, यहाँ लिखा है तो होती है। तो कब होती होगी? प्रायोगिक लब्धि में नहीं, नहीं तो अभवी को भी मानना पड़ेगा। करण लब्धि में, करण लब्धि में तीन करण है, अपूर्व करण से शुरू होती है। गुण श्रेणी वगैरह जो चार आवश्यक होते हैं ना, चार आवश्यकों के याद मालूम है? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति वो अनुभाग बंधापसरण, ये जो बातें चार आवश्यक वहां होती है। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव है अभी, फिर भी अभी उसने उपयोग अपने ओर लगा लिया है, भले अंतर्मूर्त काल कंटिन्यूस वहां उपयोग लगाने पर उसको सम्यक तो होने वाला है, अभी नियम से होने वाला है, उसके पहले ये गुण श्रेणी शुरू हो जाती उसकी। तो सम्यक तोत्पत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि, श्रावक अर्थात देशव्रति, हाँ श्रावक कहा है, सावय वीरदे, सावय कोई वीरदे, वीरत अर्थात महाव्रति, फिर चौथे नंबर पर अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला, ये विसंयोजन कौन कर सकता है मालूम है? चौथे पांचवे छठे सातवें वाला कोई भी करेगा। तो छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा चौथे गुणस्थान वाला विसंयोजन करने वाला ज्यादा विशुद्ध है और वो गुणश्रेणी ज्यादा करेगा। कौन सा विसंयोजन करने वाला? क्योंकि विसंयोजन करने वाला जीव तीन करण मानता है। ये जो सारे ही जो स्थान बताएंगे ना वो वहाँ वो तो कर देशव्रति में तो सामान्य से गुणश्रेणी निर्जरा चलती रहती है, परंतु चौथे वाले में कब होगी? एक तो चौथा के शुरू होने के पहले से शुरू हो जाती है और वो उपशम समित्व के काल में भी चलती रहती है, थोड़े काल के लिए, पूरे उपशम समित्व के काल तक नहीं चलती है, क्योंकि बाद में वो संक्रमण बदलता है उसका। गुणश्रेणी से निर्जरा जो चलती है, असंख्यात गुणा जो क्रम है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाता है उसका। तो अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला पांचवें पॉइंट पर, दर्शन मोह का क्षपक, भले फिर वो कौन से भी गुणस्थान का हो, क्षपणा करने वाले की विशुद्धि और ज्यादा है। उसके पश्चात चारित्र मोह का उपशामक, उपशामक में श्रेणी वाला लेना, और उसके आगे उपशांत कषाय को अलग निकाला है, ग्यारहवें वाले को उपशामक, फिर क्षपक और क्षीण मोह, और जिन में दो लिए, स्वस्थान जिन और योग निरोध में प्रवृत्त जिन। यहां योग निरोध वाले लिए, कहीं तो केवली समुदात वाले भी लेते हैं, समुदात वाले जिन ऐसा लिया है बहुत बहुत सी जगह। यहां योग निरोध में तो और ज्यादा निर्जरा होगी, ठीक है। इन स्थानों में ऊपर लिखा है ना, जिन्हें इतना ही लिखा था, इन स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, परंतु विशेषता क्या देखिए, परंतु निर्जरा का काल उससे विपरीत, विपरीत यानी उल्टा, निर्जरा कितनी होती है तो असंख्यात गुणी होती है, और कितने काल में होती है तो कम काल में होती है। यानी जितना काल ये पहला लिया ना सम्यक्तोत्पत्ति के वाला, उसको जो गुणश्रेणी होने का, जो उसकी गुणश्रेणी कितनी बड़ी है, उसका निर्जरा होने का काल जो है, तो कहते निर्जरा का काल उससे विपरीत अर्थात आगे से पीछे की ओर बढ़ता हुआ जो संख्यात गुणित श्रेणी रूप है, वहां संख्यात गुणा करना, काल में संख्यात गुणा करना उल्टे। यानी अंत में जो अभी हमने देखे योग निरोध वाले, यानी इसका अर्थ क्या होता है, आगे आगे वाले जो असंख्यात गुणा निर्जरा है वो कम काल में असंख्यात गुणा, निर्जरा तो असंख्यात गुणा बढ़ती है और काल संख्यात गुणा घटता है, इस प्रोपोर्शन में जानना। हमने पहले भी बहुत बार देखा है, तीन गुणस्थान कहो या तीन करण जो है ना, गुणस्थानों की भी बात करेंगे कि अपूर्व करण गुणस्थान है, अनिवृत्ति करण है, सूक्ष्म सांप्राय है, तो क्या होता है काल उससे कम होता है, संख्यात्वाभाग होता है आगे आगे, और गुणश्रेणी असंख्यात गुणा होती है। ये दोनों ही गाथाएं निर्जीर्ण होने वाले प्रदेश यानी खिरने वाले प्रदेश, निर्जीर्ण होते ना उसी से नाम आया निर्जरा। और काल से विशेषित यानी प्रदेश कितने निर्जित होते हैं, निर्जरित, और उसे कितना काल लगता है, ये दो अपेक्षा बताने वाला है। ऐसे विशेषित 11 गुणश्रेणियों का कथन करती है। ये जो 11 गुणश्रेणियां हैं उसमें निर्जरा असंख्यात गुणा है, और गुणश्रेणियों का जो आयाम है, काल है, वो संख्यात्वाभाग है। शंका, भाव विधान का कथन करते समय 11 गुणश्रेणियों में होने वाली प्रदेश निर्जरा का कथन और उसके काल का कथन किस लिए करते हैं? प्रश्न ख्याल में है? यहाँ तो भावों की अपेक्षा बताओ विशुद्धि, तो भाव के बिना थोड़े वो ऐसे होने वाली है। हाँ देखो, विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है। इस बात का ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, इस बात को बतलाने के लिए वो करना उसको उक्त कथन किया जा रहा है, अथवा वेदना द्रव्य विधान में देखो क्या कहना चाहते हैं। वेदना द्रव्य विधान में तो हमने देखा था कि नीचे नीचे वो अपकर्षण होता है और नीचे नीचे के निषेकों में परमाणु अधिक संख्या में दिए जाते हैं और वो निर्जरा उसकी होती है, तो वहां तो बताना ठीक था। हमने देखा था ना हमेशा क्या होते हैं, वो गोपुच्छा का रचना होती है, नीचे के निषेकों में हमेशा ज्यादा होते हैं परमाणु, ज्यादा होते हैं और ऊपर कम होते हैं, तो ऊपर अपकर्षण करते हैं नीचे से अधिक निकल जाता है, ऐसे गुण श्रेणी भी होती रहती, वो भी हमने वहां पर भी देखा था। अब ये भाव विधान में इसको क्यों लिया, तो यहाँ अनुभाग जो घटता है, अनुभाग के घटने में भी क्या होता है, अब ये तो निशे की रचना देखी थी, अनुभाग में हम ऐसे गोले गोले दिखाएंगे तो ऊपर का अनुभाग घटकर नीचे चला जाता है, अभी वहां जो उदय रूप जो निषेक है उसमें भी अनुभाग घटता चला जाता है, और यहाँ भी जो कम अनुभाग है उसमें प्रदेश ज्यादा होते हैं और ऊपर कम होते हैं, यहाँ स्थिति नहीं बता रहे अनुभाग बता रहे, तो जितना अनुभाग कम उसमें प्रदेशों की संख्या ज्यादा, तो वो प्रदेश तो फिर जाएंगे फिर, क्योंकि अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, जैसे स्थिति भी घट रही है उसी समय अनुभाग भी घट रहा है, तो यहां अनुभाग की अपेक्षा कथन हो रहा है। क्या कहते हैं, विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है, अनुभाग अनंतवा भाग होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है, इस बात का ज्ञान कराने से जी और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, ये कितने प्रदेश आए क्या आए उससे कुछ लेना देना नहीं, अनुभाग से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, कारण यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध, इस बात को बतलाने के लिए उक्त कथन किया जा रहा है, अथवा वेदना द्रव्य विधान में, यानी वो संख्या बताने वाले जो हमने कौन से पुस्तक में देखा था, द्रव्य विधान दसवीं में, दसवीं पुस्तक थी ना द्रव्य विधान, हाँ। जगन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करते हुए गुणश्रेणी निर्जरा की सूचना की गई थी, उस गुणश्रेणी निर्जरा का कारण भाव है, अतएव यहां भाव विधान में उसके विकल्पों का कथन करने के लिए यह कथन किया जा रहा है। पूर्वोक्त गाथा में सम्मतोपत्ति ऐसा कहने पर, अभी हमने जो दो गाथाएं पढ़ी ना सात और आठ, तो उसके स्टार्टिंग में ही जो शब्द है सम्मतोपत्ति यानी सम्यक्तोत्पत्ति, ऐसा कहने पर दर्शन मोह का उपशम करके प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का ग्रहण करना चाहिए, प्रथम सम्यक्त्व यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सावये कहने से देशविरत श्रावक देशविरति का ग्रहण किया है, विरदे कहने पर संयत का ग्रहण करना चाहिए, अनंत कम्मम से ऐसा निर्देश कहने पर अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना का ग्रहण करना चाहिए, दंशन मोहक खवगे ऐसा कहने पर दर्शन मुनि के क्षपक का ग्रहण करना चाहिए, कषाय उसामगे कहने पर चारित्र मुनि का उपशम करने वाले जीव का ग्रहण करना चाहिए, उवसंते कहने पर उपशांत कषाय जीव का ग्रहण करना चाहिए, पहले उन्होंने सारे अर्थ बता दिए हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं अभी, क्यों खवगे कहने पर चारित्र मोहिनी की क्षपना करने वाले जीव का ग्रहण करना चाहिए, क्षीण मोहे ऐसा कहने पर क्षीण कषाय जीव का ग्रहण करना चाहिए, जिने कहने पर स्वस्थान जिनों का, नो व ऊपर बिंदी देना, जिनों का अनेक है ना, और योग निरोध में प्रवर्तमान जिनों का ग्रहण करना चाहिए। इस गाथा सूत्र कलाप के द्वारा 11 प्रकार की प्रदेश गुण श्रेणी निर्जराओं की प्ररूपणा की गई है, तव ववरीदो कालो परंतु इनका गुणश्रेणी निक्षेप अध्वान, इसी का अर्थ होता है गुणश्रेणी आयाम। गुणश्रेणी निक्षेप यानी जो गुणश्रेणी रूप रचना होती है ना, परमाणु जो है वो ऊपर से नीचे निक्षिप्त किए जाते हैं, डाले जाते हैं, दिए जाते हैं, और उसका अध्वान यानी उसकी लंबाई, यानी कितने निशय कोण तक गुणश्रेणी रूप से रचना होती है, उसको कहते हैं गुणश्रेणी अध्वान। वो विपरीत है ना, अर्थात आगे से पीछे की ओर रुद्धिंगत होता जाता है, यानी लास्ट से शुरू करना, कौन है अंत में, कौन से जिन, योग निरोध करने वाले। तो आगे से पीछे की ओर वृद्धिंगत होकर जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु पहले से अंत की ओर जो हमने गुणश्रेणी निर्जरा, कितनी गुना होती है, असंख्यात गुना, और ये गुणश्रेणी का काल आगे से पीछे की ओर कितने गुना होता है, संख्यात गुना। गुणश्रेणी का जो आयाम है ना, देखो गुणश्रेणी हमें मालूम है ना, अभी हमने दिखाई थी यहाँ पर, ये उदय के समय, कभी कभी उदय के समय से लेकर भी गुणश्रेणी होती है, थोड़े ऊपर भी हो सकती है, उदयावली के ऊपर भी होती है। तो क्या होता है, एक एक निषेक में ये असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा परमाणु दिए जाते हैं इस तरह से। ये अंतर मुहूर्त काल तक ये ऐसी गुणश्रेणी चलती है, परंतु प्रथमोपशम समय तो होने के पहले जितनी लंबाई होती है ना गुणश्रेणी, कितनी होती है मालूम है, कितनी बड़ी होती है गुणश्रेणी, उसका काल। गुणश्रेणी कहाँ से शुरू होती है, अपूर्व करण से, अध प्रवृत्त करण में तो नहीं गुणश्रेणी थी, वहां तो अनंत गुणी विशुद्धि होती थी। तो अपूर्व करण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस थोड़ा काल, इतनी लंबी वो गुणश्रेणी की ये रचना होती है, उसको कहते हैं उसका अध्वान, उसका काल या गुणश्रेणी का आयाम। तो यहाँ जितना है ऊपर ऊपर के गुणस्थानों, अभी जो हमने क्रम देखा था उसमें गुणश्रेणी का छोटा होता है, यानी निषेकों की संख्या उसमें कम होती है और निर्जरा अधिक होती है, यानी जब हम कहते हैं कम बच्चे तो ज्यादा माल आएगा पिताजी का माल, वैसे थोड़े निषेकों में अधिक परमाणु बढ़ जाते हैं तो उसमें ज्यादा निर्जरा हो जाती है, विशुद्धि ज्यादा है तो इसमें अपकर्षण ज्यादा होता है परमाणुओं का, उसको कहते हैं असंख्यात गुणा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखो पूर्व के समान असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध करने के लिए संख्यज गुणाएं सेड़िए, यह कहा है, यानी निर्जरा तो असंख्यात गुणा है परंतु गुणश्रेणी का आयाम उल्टे क्रम से संख्यात गुणा बढ़ता है। सवत्थो वो दंशन मोह उवसामयस्य गुणसेडी गुणु, अब यहां एक एक को बताएंगे। दर्शन मोह का, एक मिनट, बीच में दो लाइन मैंने पढ़ी नहीं। इस प्रकार दो गाथाओं के द्वारा कही गई, ये दो गाथाएं बताई ना अभी, 11 गुणश्रेणियों का ये बताए थे, नाम तो बता दिए थे, अभी हमारा विशेषण बताए। मंद बुद्धि शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए, मंद बुद्धियों को समझाने के लिए पुनः दूसरी बार कथन करते हैं, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं, जो अभी हमने 11 नाम बताए पढ़े हैं उसी को यहाँ दोबारा बताएंगे। अब ऊपर का पढ़ती हूँ फिर दोबारा। सवत्थो वो दंशन मोह उवसामयस्य गुणसेडी गुणों, दर्शन मोह का उपशम करने वाले का गुणश्रेणी गुणकार सबसे स्तोक है। गुण शब्द का अर्थ गुणकार है, गुणश्रेणी है ना, गुणश्रेणी होता है, गुण संक्रमण होता है, गुणहानि होता है, उसका अर्थ क्या होता है, गुणकार। गुणकार यानी वो गुणित प्रमाण में होता है, तथा उसकी श्रेणी आवली या पंक्ति का नाम गुणश्रेणी है। श्रेणी यानी पंक्ति, पंक्ति रूप रचना, परंतु कैसे, गुणित क्रम से। दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव का प्रथम समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाला द्रव्य स्तोक है, स्तोक है यानी कम है। आवली का अर्थ होता है पंक्ति भी होती है ना, वो आवली है ने अपनी आवली ने असंख्यात समयों की आवली वो ने ओल ओल ऐसे कहते ना अर्घ्यावली वैसे कहते ना नाम सुना होगा अर्घ्यावली अनेक अर्घ्य देंगे तो अर्घ्यावली यानी वो पंक्तियां देखो दर्शन मोह का उपशम करने वाले का जो पहले समय में जितनी निर्जरा होगी वो द्रव्य स्तोक है उससे द्वितीय समय में निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा है उससे तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा है इस प्रकार दर्शन मोह उपशामक के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए यह गुणकार पंक्ति गुणश्रेणी है यह उक्त कथन का तात्पर्य है तथा गुणश्रेणी का गुण गुणश्रेणी गुण अर्थात गुणश्रेणी गुणकार कहलाता है यानी यहाँ जितना असंख्यात गुणा हम कह रहे हैं ना वो असंख्यात का प्रमाण भी विशिष्ट होगा तो वहाँ वो गुणश्रेणी का गुणकार कहलाएगा यह उक्त कथन का तात्पर्य भावार्थ इसका भावार्थ यह है सम्यक्त्व की उत्पत्ति में अभी हमने देखा ना करण लब्धि के अपूर्व करण से ही ये गुणश्रेणी की रचना शुरू हो जाती है और वहां पर वो उसका उदय भी शुरू हो जाता है तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जो गुणश्रेणी गुणकार सर्वोत्कृष्ट है वह भी आगे कहे जाने वाले गुणकार की अपेक्षा स्तोक है यह उक्त कथन का तात्पर्य है सर्वोत्कृष्ट है नहीं वहां पर वो असंख्यात गुणा वाला है फिर भी आगे वाले जो हमने स्थान देखे उससे यह गुणकार छोटा है हाँ आपका प्रश्न ऐसा है अरविंद भाई का ये हमने अभी देखे ना ये इस तरह से दर्शन मोह का प्रथम उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति में ये गुणश्रेणी हुई गुणश्रेणी की रचना हुई अभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति का काल तो बाद में है जब अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय आएगा तब जाके ये होगा तो ऐसी गुणश्रेणी की रचना कौन से कर्म में होती है बोलो भाई दर्शन मोनी मरते आप क्या कहते हैं आयु छोड़कर सभी कर्मों में होती है यानी दर्शन मोह का उपशामक है दर्शन मोह में तो ऐसी गुणश्रेणी हुई परंतु वो ज्ञानावरण में हो गई दर्शनावरण में हुई सभी में हो गई सभी कर्मों की वहां निर्जरा होगी हो अकेले दर्शन मोह की नहीं होगी परंतु दर्शन मोह तो में उसमें तो गैप तैयार होता है तो गैप तैयार होने के कारण क्या होगा अभी ये जो ऊपर ऊपर के जो है ना हमने अनिवृत्तिकरण के पश्चात वाले भी कुछ निशय किसमें लिए थे उसको और ऊपर के और कुछ निशेकों को उसमें से वो हटा देते हैं नीचे अंतर हो जाता है बीच में यहां तो अंतर हुआ पर अन्य कर्मों में क्या होगा अन्य कर्मों से उतनी गुणश्रेणी चलेगी यह उपशम सम्यक तो भी प्राप्त हो जाएगा और उसके काल में तो कुछ है ही नहीं वहां पर तो वहां गुणश्रेणी ये तो सब निकल गई ये तो मिथ्यात्व के परमाणु थे ना दर्शन मोह के उपशम सम्यक तो के काल में इसका उदय भी नहीं अभी अरविंद भाई ने क्या कहा यहां तो अभी क्या बताया उपशामक के अंत समय तक यानी दर्शन मोह के जो उपशामक है उसका अंतिम समय तक तो क्या है वहां तो दर्शन मोह का उदय ही नहीं है तो उसकी निर्जरा कैसे होगी तो अन्य कर्मों में यहाँ निर्जरा चल रही है ज्ञानावरण वगैरह उसकी निर्जरा चल रही है उसने उस काल में भी इसलिए उसके अंतिम समय तक ऐसा कहा दर्शन मोह का तो नीचे जो है परमाणु उसका तो निर्जरा कर दिया असंख्यात गुणा से किया और जब उपशम सम्यक्त का काल शुरू हो गया तो जो ऊपर जो सारे सत्ता में पड़े उसको तो उपशमित कर दिया है उसका तो उदय होगा नहीं हाँ तो यहां दर्शन मोह की गुणश्रेणी नहीं समझना अभी अंतिम समय तक अन्य कर्मों में हाँ जो सभी स्थिति वो तो प्रायः लब्धि में हो गई किसके दूसरे की अपेक्षा? किसकी उत्कृष्ट स्थिति है? हाँ, तो सम्यक तो होने के पहले अंतक कोड़ा कोड़ी हो गई। हाँ, यानी वहाँ जो अपकर्षण हो गया है, उसका सामान्य अपकर्षण हुआ है, सभी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंतक कोड़ा कोड़ी में। ये अधिक से निर्जरा तो गुण श्रेणी द्वारा ही होगी। क्योंकि उससे निर्जरा मानना पड़ेगा तो अभव्य को भी प्रायोगिक लब्धि होती है, उसके भी निर्जरा मानने का प्रसंग आएगा। ये तो अपकर्षण हुआ है वहां, यानी वो तो स्थिति कांडक घात वगैरह जो कुछ हुआ है, एक बड़ा स्थिति कांडक घात होके जो अधिक काल वाले परमाणु वो तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसकी बात नहीं, निर्जरा नहीं कहना उसको। यहां लिखा ना देखो, दर्शन मोहक उपशामक के अंत समय तक ले जाना चाहिए। इसलिए अरविंद भाई ने वो खुलासा किया कि ज्ञानावरणादि आदि की तीर निजा, हाँ, उपशामक के अंत समय तक है। वो बहुत स्लोली बोलते हैं ना, उसका भी फायदा है ना। अभी आगे का सूत्र देखेंगे। संजदा संजदस्य गुण श्रेणी गुणों असंख्यज गुणों। यहाँ गुण श्रेणी गुणों कहा, क्योंकि ये जो गुणकार जो है, असंख्यात का जो प्रमाण है, गुणा उतने गुणा उतने गुणा है ना, तो ये गुणकार यहाँ बढ़ेगा। देखो हम पढ़ते अर्थ उसका, उससे संयता संयत का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। संयता संयत की गुण श्रेणी निर्जरा का जो जघन्य गुणकार है, वह पूर्व के उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। देखो दर्शन मोह में भी वो गुणकार का प्रमाण जघन्य से उत्कृष्ट अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? दर्शन मोह को प्राप्त करने, ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करने वाले जीवों में भी विशुद्धि कम ज्यादा हो सकती है ना। उसमें कोई तीरियंच है, तीरियंचों की अपनी रेंज अलग होगी, मनुष्यों की होगी अलग, तो उसकी अपेक्षा वहां हो सकता है उसका थोड़े जघन्य से उत्कृष्ट ऐसे वेरिएशन होगा। तो वहां का जो उत्कृष्ट था गुणकार, उससे यहाँ वाला जो है जघन्य, वो भी असंख्यात गुणा है। देखो पूर्व के उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा असंख्यात गुणा है, यह लिखो ना। संयता संयत की गुण श्रेणी निर्जरा का जो जघन्य गुणकार है, पूर्व में हमने कौन सा देखा, दर्शन मोह की उपशमना करने वाले का जो गुणकार है, जो उत्कृष्ट भी हो, तो उससे यह गुणकार असंख्यात गुणा है। पहले में पांचवे में जाता है तो उसको हम संयता संयत कहेंगे ना। पहले से ज्यादा संयत होगा तो उसको हम संयत में गिनेंगे। हमको तो यहाँ अन्य अन्य जीवों की भी अपेक्षा ये गुणश्रेणी किसकी होती है, तो जो पहले से सातवें में जाने वाला है तो उसका वो गुणश्रेणी भी, श्रेणी का आयाम छोटा होगा और गुणश्रेणी निर्जरा का गुणकार बड़ा होगा। कोई जो पहले से डायरेक्ट सातवें में जाता है तो उसकी विशुद्धि ज्यादा है, तो अपूर्व करण वो पहले से उसके ये जो गुणश्रेणी का आयाम वगैरह जो है वो छोटा होगा, गुणश्रेणी निर्जरा ज्यादा होगी, पहले से वो बनेगा। तो जो कहते ना चौथे पांचवे को टच होते होते जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, शुरू से उसकी विशुद्धि ज्यादा है। अधापवत्त संजदस्य गुणश्रेणी गुणों असंख्यज गुणों। उससे अधप प्रवृत्त संयत का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। यह अध प्रवृत्त लिया यहाँ, अध प्रवृत्त संयत किसको कहते हैं? श्रेणी के सन्मुख वाला, साती से अप्रमत्त। देखो यहाँ क्या कहते हैं, संयता संयत के उत्कृष्ट गुणश्रेणी गुणकार की अपेक्षा स्वस्थान संयत का जघन्य गुणकार असंख्यात गुणा है। शंका, यहाँ स्वस्थान संयत लिया, स्वस्थान कहो या वो विरति हो गया ना, नहीं वहाँ अदप प्रवृत्त क्यों लिखा, इस स्वस्थान को ही अदप प्रवृत्त कह दिया उन्होंने। शंका, यतः संयमा संयम रूप परिणाम की अपेक्षा संयम रूप परिणाम अनंत गुणा है, अतः संयमा संयम परिणाम की अपेक्षा संयम परिणाम के द्वारा होने वाली प्रदेश निर्जरा भी अनंत गुणी होनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरी जगह सर्वत्र कारण के अनुरूप ही कार्य की उपलब्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं, हमने पहले जो अनंत गुणा का बात की थी अल्प बहुत्व में, वो किस अपेक्षा से की थी, अनुभाग की अपेक्षा से की, और यहाँ निर्जरा में किसकी निर्जरा होती है, नंबर ऑफ प्रदेश, प्रदेशों की निर्जरा होती है। तो देखो समाधान, नहीं, क्योंकि प्रदेश निर्जरा का गुणकार योग गुणकार का अनुसरण करने वाला होता है, अतएव उसके अनंत गुणे होने में विरोध आता है। हमने देखा था योग का गुणकार तो असंख्यात में होता है, योग हमेशा हम असंख्यात में नापते थे। दूसरी बात, प्रदेश निर्जरा में अनंत गुणत्व स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर गुणश्रेणी निर्जरा के दूसरे समय में ही मुक्ति का प्रसंग आवेगा। तीसरे, कार्य कारण का अनुसार करता ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि अंतरंग कारण की अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कार्य के बहिरंग कारण के अनुसरण करने का नियम नहीं बन सकता। हमेशा हम कहते हैं ना उपादान से कार्य होता है, अभी निमित्ता है इसलिए सब में वो कार्य हो, ऐसी बात नहीं है। तो अंतरंग कार्य कारण ही प्रबल होता है, उसी के अनुसार कार्य होता है, तो वो बाह्य निमित्त अलग हो तो भी वो उसके अनुसार कार्य नहीं होता। शंका, श के ऊपर बिंदी, सम्यक्त्व सहित संयम, यह आपका प्रश्न, और संयमा संयम से होने वाली गुण श्रेणी निर्जरा, ये कहती उल्टा सुलटा ही पूछ रहे। देखो, सम्यक्त्व सहित संयम और संयमा संयम से होने वाली गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक्त्व के बिना संयम और संयमा संयम से ही होती है, यह कैसे कहा जाता है? अरे उसके बिना तो होती ही नहीं है। शंकाकार ने क्या पूछा, पहले तो सम्यक्त्व उत्पत्ति बताया, फिर डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि संयमा संयम है और संयम है, उसके असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। तो उसने क्या समझ लिया, पहला वाला जो बताया था वहां तो सम्यक्त्व वाला है और आगे आगे वाला है वो संयम असंयम है और संयम है, यानी उसमें सम्यक्त्व की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लिया। क्या कहते हैं, समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व परिणाम को प्रधानता नहीं दी गई है, वो है नहीं, वो बात नहीं है, अथवा संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी है, अन्य नहीं। ये कर्णन योग वाला बता रहे हो, क्योंकि अन्य में गुणश्रेणी निर्जरा रूप कार्य नहीं उपलब्ध होता, इसलिए संयम के ग्रहण करने से ही सम्यक्त्व सहित संयम की सिद्धि होती है। जब संयम कहते ही है तो उस सम्यक्त्व वहां अपने आप उसकी सिद्धि होती ही है। यदि सम्यक्त्व न हो और जैसे संयमी के आचरण है व्रत आदि है वैसे अंगीकार करेंगे तो निर्जरा कितनी होगी, हाँ शुभ भाव है, तो एक समय वाली जितना प्रदेश खिरता है उतना खिरेगी जो सामान्य संसारी के खिरते हैं। इसीलिए तो कहा है ना, ज्ञानी के जो एक क्षण में निर्जरा होती है तो अज्ञानी के करोड़ों भवन तक तप तपने से उतनी निर्जरा नहीं होती। निर्जरा उसकी एक एक समय वाली होगी और उसको बंद भी हो रहा है उतना ही। शुभ भाव बंदे तो क्या हुआ, निर्जरा तो उसकी है ही नहीं है। अनंतानुबंधी विसंजो एंतस गुणसेडी गुणो असंख्यज गुणो, उससे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। स्वस्थान संयत के उत्कृष्ट गुणश्रेणी गुणकार की अपेक्षा, अब वो तो स्वस्थान संयत दिया था, असंयत असंतय हुआ है, असंयत करना, ये हम ऐसा ही पढ़ लेते हैं ना, पता नहीं चलता क्या है। देखो स्वस्थान संयत के उत्कृष्ट गुणश्रेणी गुणकार की अपेक्षा, वो शब्द असंयत करना, असंतय हुआ है ना, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत जीवों में अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले जीव का जघन्य गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। यानी ये अनंतानुबंधी का विसंयोजन कौन कर सकते है, बात बताइए। चौथे वाले को भी लिया, पांचवे वाले को लिया और संयत ने छठे सातवें वाले को भी लिया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। उन जीवों से अनंत, ये जो अभी देखे ना हमने संयत जीवों से भी चौथे गुणस्थानी वाला जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला है उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, उसका गुणश्रेणी ज्यादा है। यहां सब जगह गुणश्रेणी गुणकार ऐसा कहने पर गलमान प्रदेशों का गुणश्रेणी गुणकार और निसिंचमान प्रदेशों का गुणश्रेणी गुणकार ग्रहण करना चाहिए। ये गलमान क्या होता है और निसिंचमान क्या होता है? हाँ, गलमान ने जो उदय रूप जो है ना, जैसे अभी ये गुणश्रेणी की रचना हुई, एक समय में हुई, दूसरे समय में जितना पहले समय में माल आया नीचे उससे असंख्यात गुणा माल दूसरे समय में इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणा। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उदय वाला ये तो समय खिर जाएगा, दूसरे समय उसमें माल भी आएगा और ये भी खिर जाएगा। वो तो जो निर्जरा होती है वो भी पहले समय में होगी, उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, चौथे समय उससे, उसको कहते वो गलमान, गलने वाली, खिरने वाली। और निसिंचमान ने जो ऊपर के सारे निषेकों में से अपकर्षण होकर परमाणु नीचे दिए जाते हैं, गुणश्रेणी की रचना होती है उसमें जो निक्षिप्त किए जाते हैं, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग तो वहां निषेक थे ऐसे मान लेते हम। पहले कैसे होते हैं, पहला निषेक बड़ा होता है और ऊपर के निषेक छोटे होते हैं, ये पूर्व अवस्था ऐसी थी। अब गुणश्रेणी में क्या हुआ, इतना माल दिया इस तरह से अभी ऐसा दिखता है, ये गुणश्रेणी हुई और उसमें बढ़ती चली जाएगी ना, एक एक प्रदेश खिरता जाएगा, पर ये गुणश्रेणी ऊपर के निषेक में दी जाएगी और फिर नीचे का खिरेगा ऊपर, और वो तो कायम रहेगी उतनी गुणश्रेणी उतने काल तक। उपशमने का जो काल है ना, वहां की बात की थी, संयत में तो हमेशा चलती रहेगी। तो ये जो गुणश्रेणी का आयाम है वो संयतों की अपेक्षा विसंयोजन करने वाले का छोटा है और वो निर्जरा होने वाले उसकी संख्या ज्यादा है। तो ये दोनों के लिए गुणकार समझना। देखो शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह गुणश्रेणी गुणकार ऐसा सामान्य निर्देश करने से जाना जाता है। ये जो गुणकार है, गुणित प्रमाण जो है, जो असंख्यात का प्रमाण है, वो सभी को हम असंख्यात गुणा कहेंगे, परंतु असंख्यात का प्रमाण में असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाएगा। फिर शंका, संयम रूप परिणामों की अपेक्षा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले असंयत सम्यक दृष्टि का परिणाम अनंत गुणाहीन होता है, ऐसी अवस्था में उससे असंख्यात गुणी प्रदेश निर्जरा कैसे हो सकती है? ये सवाल तो हमें भी उठना स्वाभाविक है ना। अरे वो तो छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, और आप तो यहाँ वो तो स्वस्थान अप्रमत्त कहा था, और यहाँ पर आप कह रहे हो चौथे वाला, तो उसके परिणाम ज़्यादा विशुद्ध हो गए क्या? कहते हैं समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयम रूप परिणामों की अपेक्षा अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना में कारणभूत सम्यक्त रूप परिणाम अनंत गुणे उपलब्ध होते हैं। हमें तो बाह्य की ओर ही नजर जाते हैं, अरे उन्होंने तो इतना त्याग कर दिया, ऐसा ऐसा वो उनके शुभ भाव है, और यहाँ पर ये तो गृहस्थ ही है। देवों के होगा कि नहीं अनंतानुबंधी का विषय, देवगति वालों को? हाँ हाँ, शायिक समय दृष्टि की कहाँ बात है? हाँ, देव गति में भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। वो विसंयोजना करके क्षायिक होता है उसकी बात यहाँ नहीं ली है, ये तो केवल विसंयोजना करने वाले जीव की बात है। विसंयोजना करने वाला क्षायिक होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, और क्षायिक करने वाला ही विसंयोजन करता है, ऐसी भी बात नहीं। ये तो देव गति वाले, ये बात आई थी पहले अपने क्षपित कर्मांशिक के प्रकरण में, ये बात आई थी। तो वहां उसके उतने काल में, क्योंकि जब तक वो करण परिणाम है तब तक की बात है ना, विसंयोजना करना ने वो विसंयोजना कर दिया तो कायम उसकी गुणश्रेणी चलती, वो बात नहीं है। विसंयोजना कैसे करते हैं, किस परिणामों के द्वारा, तो ये तीन करण होते हैं, अधप्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। जब उसका जो काल चलता है तब उतने काल में उसकी विसंयोजना हो जाती है, तो उतने काल में उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, ये संयतों से भी ज्यादा बढ़ जाती, ये बात बताना चाहते हैं। फिर शंका, यदि सम्यक्त रूप परिणामों के द्वारा अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना की जाती है तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों में उसकी विसंयोजना का प्रसंग आता है? समाधान, ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं कि सब सम्यक दृष्टियों में उसकी विसंयोजना का प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि विशिष्ट सम्यक्त रूप परिणामों के द्वारा ही, अभी सम्यक्त के परिणाम भी कितने अलग अलग विशुद्धि वाले हैं, तो उसमें भी पर्टिकुलर विशिष्ट सम्यक्त रूप परिणामों के द्वारा ही अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना स्वीकार की गई है। दंशन मोह खवगस्स गुणसेड़ी गुणों असंख्य गुणों, उससे दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव के दोनों गुणश्रेणी संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव की दोनों प्रकार की गुणश्रेणियों का जघन्य गुणकार असंख्यात गुणा है। ये दोनों गुणश्रेणी कौन सी है? ये मैं भी अभी कॉमन सेंस ही बताऊंगी। देखो, जब विसंयोजना करता है तो तीन करण परिणाम मानता है, अधप्रवृत्त करण में तो कोई गुणश्रेणी नहीं कहेंगे, तो वहां की अपूर्वकरण की गुणश्रेणी और अनिवृत्तिकरण की गुणश्रेणी हम देखते हैं ना, अपूर्वकरण की गुणश्रेणी से अपूर्वकरण अनिवृत्ति की छोटी होती है और निर्जरा ज्यादा होती है उसमें, तो ये दोनों गुणश्रेणियां कहेंगे। तो वहां के दोनों गुणश्रेणी संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा अभी इसमें कोई और अर्थ निकलता है तो सुधारना मुझको। मुझे तो यही लगता है। दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव के दोनों प्रकार की गुण श्रेणियों का जघन्य गुणकार असंख्यात गुणा है। अतीत, अनागत और वर्तमान प्रदेश गुण श्रेणी गुणकार पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जानना चाहिए। यानी यहाँ का जो प्रदेश गुण श्रेणी गुणकार है वो कितना है, तो पल्लोपम के असंख्यात विभाग, अतीत, अनागत और वर्तमान जीवों की बात की है ना, किसकी है? या जो कर चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा उनके लिए यही प्रमाण होगा, प्रदेश गुण श्रेणी गुणकार पल्लोपम के असंख्यात विभाग। यानी जो असंख्यात गुणा का प्रमाण कितना है, तो पल्ल्य का असंख्यात विभाग गुणा कषाय उपशामकस्य गुण श्रेणी गुणो असंख्येज्य गुणो, उससे कषाय उपशामक जीवक जीव के को का के करना, जीव का के जीव के जीव का जीव का करो। ऊपर क्षय करने वाले जीव का लिखा था ना, वैसे यहां भी जीव का करना, कषाय उपशामक जीव का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। दर्शन मुनि का क्षय करने वाले जीव की दोनों प्रकार की गुण श्रेणियों के उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा कषायों का उपशम करने वाले जीव का जघन्य गुणकार असंख्यात गुणा है। दर्शन मोह के क्षपक के गुण श्रेणी गुणकार से ये वहां दर्शन मोह का क्षपक लिया है, चारित्र मोह का नहीं अभी लिया, उसकी तो बात आगे आएगी। अभी हमने 179 पर जो देखा था दर्शन मोह का क्षपक, उसकी अपेक्षा देखो, दर्शन मोहनी के क्षपक के गुण श्रेणी गुणकार से अपूर्वकरण उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। उससे अनिवृत्तिकरण उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है, और उससे सूक्ष्म सांप्रायिक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है। ये दोनों प्रकार के समझ में आए ना अभी? यहां उपशामक के लिए दोनों प्रकार के नहीं लिया है, उसमें तो तीन गुण श्रेणी अलग अलग होती है, एक अपूर्वकरण की, एक अनिवृत्तिकरण की और एक सूक्ष्म सांप्रायिक के। और यहां दर्शन मुनि में कौन से लिए? दो प्रकार के गुण श्रेणी लिए, क्योंकि उसमें जो तीन करण परिणाम होते हैं उसमें पहले अधप्रवृत्त करण में तो वो गुण श्रेणी नहीं है जो क्षपक वाली जो है वो, तो उसकी अपूर्वकरण की गुण श्रेणी और अनिवृत्तिकरण की गुण श्रेणी। ये बार बार तीन करण मान के ये सारे देखो, मिथ्या तो में से सम्यक तो हुआ तो भी तीन करण मान लेते, चौथे में से पांचवें में गया तो भी तीन करण से होगा, पांचवें में से सातवें में गया तीन करण होगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए तीन करण अलग, दर्शन मोहनी की क्षपणा करने के लिए तीन करण अलग, अभी श्रेणी चढ़ना है उपशम श्रेणी, तो उपशम श्रेणी चढ़ना है तो उसके लिए भी ये तीन करण मांडेगा, तो उसका पहला करण तो सातवें गुणस्थान में बीत जाता है अधप्रवृत्त करण, और फिर आठवें के लिए एक अलग नाम दिया, अपूर्वकरण के लिए गुणस्थान का ही नाम दिया, अनिवृत्तिकरण तो गुणस्थान का ही नाम हुआ है, और फिर और एक सूक्ष्म सांप्राय वगैरह वगैरह आए। कौन सा अधप्रवृत्त करण को नहीं, उन्होंने अधप्रवृत्त संयत कहा, यानी वो नीचे वाला संयत कहना चाहते हैं, मेरी भी गफलत हुई थी वहां, अधप्रवृत्त करण वाला नहीं है वो, स्वस्थान को ही उन्होंने अधप्रवृत्त संयत कहा है, स्वस्थान वाला लिया। स्वस्थान स्वस्थान, उसका अर्थ उन्होंने स्वस्थान किया था, अध प्रवृत्त का अर्थ स्वस्थान किया था, अर्थ में ही दिया था ना उन्होंने, अध प्रवृत्ति ने वो नीचे के ऊपर नीचे होता रहता है वो। अभी यहाँ शंका, इसी प्रकार चारित्र मौखिक शपकों के भी पृथक पृथक गुणकार के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने पर गुण श्रेणी निजरा 11 प्रकार की न रहकर 15 प्रकार की हो जाती है। इस शंका के उत्तर में कहते हैं वह 15 प्रकार की नहीं होती, क्योंकि नैगम नय का अवलंबन करने पर तीनों उपशामकों और तीन क्षपकों के एकत्व की विवक्षा होने पर 11 प्रकार की गुण श्रेणी निर्जरा बन जाती है। वो सबको मिलकर उपशामक नाम दिया है तीनों को इकट्ठा करके, इसलिए यहाँ 11 प्रकार की कहेज में आती है। वसंत कषाय वीयराय छदुमत्थ गुण श्रेणी गुण असंख्यज गुण, उससे उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थ का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुण का गुण है। गुणकार कितना है? वह पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। फिर भी पहले वाला जो पल्योपम का असंख्यातवा भाग था उससे यह असंख्यात गुना होगा। यहां मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करनी चाहिए। अभी यहां कौन से दो गुण? ओहो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ उपशम भाव को प्राप्त मोहिनी कर्म की निर्जरा संभव नहीं। ये मोहिनी की निर्जरा क्यों नहीं होती यहाँ पर? हाँ हाँ, तो किसकी निर्जरा चलेगी यहाँ पर? आयु को छोड़कर अन्य कर्मों की, क्योंकि मोहिनी पूरा उपशमित हुआ है, पूरा दब चुका है, उसका कोई ये नहीं चल रही, निर्जरा उसकी नहीं हो रही है। कषाय खवगस्य गुणश्रेणी गुणो असंख्यज गुण, उससे कषाय क्षपक का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है। उपशांत कषाय की दोनों गुणश्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा। अब यह दोनों ही नहीं, जगन्य उत्कृष्ट समझना, क्या समझना? अच्छा, ओहो, ऐसा लेना क्या वहां पर क्षाय की और उपशामक की? ये केवल दोनों 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 ऐसे ही लिखा है, पता नहीं, क्योंकि 11वें में दो गुण श्रेणियां कौन सी ली उसने? अब पढ़ेंगे कषाय क्षपक का, ऊपर पढ़ा ना हमने कषाय खवगस्य गुण श्रेणी गुण असंख्यज गुण, उससे कषाय क्षपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है। उपशांत कषाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा। द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त हुए तीन क्षपकों का, द्रव्यार्थिक नय से अभेदे ने सबको मिलकर क्षपक कह दिया, भले वो आठवें वाला हो, नौवें वाला हो या दसवें वाला हो, तो उसको कहा द्रव्यार्थिक नय से अभेद। तीनों क्षपकों का जघन्य भी गुणकार, जघन्य भी गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है, शेष कथन सुगम है। क्षीण कषाय वीयराय छदुमस्थस्य गुणश्रेणी गुणो असंख्यज गुण, उससे क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थ का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है। क्योंकि मोहिनी के बंध उदय व सत्व का अभाव हो जाने से, बंध का अभाव कहाँ पर हुआ मोहिनी का? नवे के अंत में। उदय का अभाव दसवें के अंत में, और सत्व का अभाव वो भी वहीं पर क्षय हुआ ना उसका, हो जाने से कर्म निर्जरा की शक्ति अनंत गुणी वृद्धिंगत हो जाती है। क्या कहते हैं, मोहनी का ना बंध है ना सत्व है ना उदय है, इसलिए अन्य कर्मों की जो निर्जरा जो हो चल रही है उसकी शक्ति अनंत गुणी बढ़ जाती है। शक्ति है ये निर्जरा अनंत गुणी होती है, ऐसा नहीं कहा। अधापवत्त केवली संयदस्य गुणश्रेणी गुण असंख्यज्य गुण, उससे अधप्रवृत्त केवली संयत का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है। ये स्वस्थान को ही अधप्रवृत्त नाम दिया उन्होंने। गुणकार क्या है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है, क्योंकि घातिया कर्मों के क्षीण हो जाने से कर्म निर्जरा का परिणाम अनंत गुणी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्म निर्जरा का परिणाम है विशुद्धि। योग निरोध केवली संजदस्य गुणसेड़ी गुणों असंख्यज्य गुणों, उससे योग निरोध केवली संयत का गुणश्रेणी गुणकार असंख्यात गुण है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अब तब विवरी दो कालो संख्यज्य गुणों सेड़ी है, इस गाथा सूत्र के अर्थ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब आगे के सूत्र में उल्टा क्रम ले लेंगे, योग वाले उसको पहला रखेंगे, क्योंकि गुणश्रेणी का आयाम अभी बढ़ जाएगा उल्टे क्रम से, संख्यात गुणा हो जाएगा। देखो यही बात बताते, सवत्थो वो योग निरोध केवली संजदस्य गुणश्रेणी कालो, ये गुणश्रेणी का काल की बात चल रही है। योग निरोध केवली संयत का गुणश्रेणी काल सबसे स्तोक है। योग निरोध करने वाला संयोग केवली आयु को छोड़कर शेष कर्मों के प्रदेशों का अपकर्षण कर उदय में स्तोक देता है, उससे द्वितीय समय में असंख्यात गुणा देता है, उससे तीसरी स्थिति में स्थिति यानी निषेक असंख्यात गुणा निक्षिप्त करता है, इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल तक निक्षिप्त करता है, उससे आगे के समय में असंख्यात गुणे हीन प्रदेश निक्षिप्त करता है, आगे अपनी अपनी अतिस्थापनावली को नहीं प्राप्त होने तक विशेष ही निक्षिप्त करता है। यहाँ गुणश्रेणी कर्म प्रदेश निक्षेप का अध्वान स्तोक है, अध्वान निकाल, क्योंकि वह सबसे जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण है। ये छोटे में छोटे जो हमने देखा था ना, ये जो गुणश्रेणी रूप से दिया जाता है वो असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है। यहाँ तो गुणश्रेणी दिया, अब ऊपर तो सामान्य अपकर्षण हुआ है, तो वहां कितना होगा, तो जितने ऊपर के निषेक है उसमें एक एक छह घटता हुआ दिया जाएगा। तो यहाँ यहाँ तक तो ऐसे गुणश्रेणी रूप दिया, उसके आगे वो भले ही यहाँ से यहाँ माल अधिक दिया परंतु अधिक निषेकों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो इस तरह से घटते क्रम से दिया जाएगा। तो गुणश्रेणी के अंतिम समय में जितना दिया था उसका असंख्यात भाग उसके ऊपर दिया, ये बात अभी हमने पढ़ी। हाँ, तो ये अतिस्थापना वाली को कहाँ छोड़ना, तो हर एक निषेक में से अपने निषेक नीचे के निषेकों में माल जा रहा है हर एक में से, इसलिए अपनी अपनी अतिस्थापना वाली के जैसे सबसे ऊपर के निषेकों में से माल नीचे आ रहा है, यहां से भी आ रहा है हर एक का, तो कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपने अपने निषेक के नीचे एक आवली छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसका हर एक का अपना अपना अति स्थापनावली अलग अलग होगी, इसलिए अपना शब्द डाला वहां, अपने अति स्थापनावली तक वो प्रदेशहीन क्रम से दिया जाता है। ये यहाँ अभी हमने देखा था, यहाँ तो अधिक क्रम से दिया और ऊपर कहाँ तक देना, अति स्थापनावली, तो हम ऊपर की कहेंगे, परंतु हर एक निषेक में से जो माल आया है वो अपने अपने नीचे सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अपने नीचे की अतिस्थापनावली को छोड़कर। अतिस्थापनावली ने जिसमें परमाणु नहीं दिए जाते उसको कहते हैं अतिस्थापनावली। यहां यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो योग निरोध केवली वाला जो गुण श्रेणी का जो काल है वो सबसे छोटी गुणश्रेणी है, उसकी लंबाई छोटी है। अधापवत्त केवली संजदस्य गुणश्रेणी कालो संख्यज्य गुणों, उससे अधः प्रवृत्त केवली संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। अधः प्रवृत्त यानी सस्थान केवली, यहां पर भी उदयादि गुण श्रेणी का क्रम, उदयादि उदयादि का अर्थ थे उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी रूप से दिया है। कहीं कहीं पर एक आवली तक कुछ नहीं दिया जाता, उदयावली को छोड़कर दिया जाता है, और कहीं पर उदय के समय से दिया जाता है। उदयादि गुण श्रेणी का क्रम पहले के ही समान कहना चाहिए। विशेष इतना है कि पहले के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप के अध्वान से अधप्रवृत्त केवली के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप का अध्वान संख्यात गुणा है। वहां जितना गुण श्रेणी का आयाम था, जितने निषेकों में गुण श्रेणी रूप से रचना की थी, अब ये उल्टे क्रम से आए ना, उससे संख्यात गुणा स्वस्थान केवली का, ये जो असंख्यात गुणा वाला क्रम है, ये गुणा जो गुणित प्रमाण है उल्टा आ रहे ना, गुणित प्रमाण असंख्यात वा भाग हो जाएगा और उसका आयाम संख्यात गुणा बढ़ेगा। हाँ, स्वस्थान केवली ने तेरहवे का अन्य काल योग निरोध को छोड़कर। हाँ देखो, यहां पर भी उदय ये हो गया। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय, यानी उसके संख्यात गुणा है, इतनी बात लेनी। क्षीण कसाय वीयराय छदुमस्त गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। ये उल्टा है ना, तो संख्यात समय ही कहेंगे अभी। कषाय खवगस्त गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे कषाय क्षपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। यहां गुण श्रेणी के प्रदेश निक्षेप क्रम को स्मरण करके करना कहना चाहिए। अब उवसंत कसाय वीयराय चदुमत्थ गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। कसाय उवसामयस्य गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे कषाय उपशामक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। यानी तीनों को लेना, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय उपशामक। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। दंशन मोहक खवयस्य गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे दर्शन मोहक क्षपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। अनंतानुबंधी विसंयोजयंतस्य गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे अनंतानुबंधी विसंयोजक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। अधापवत्त संयदस्य गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे अधप्रवृत्त संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। अधप्रवृत्त डबल त संयत स्वस्थान अप्रमत संयत और एकांत अनुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित संयत, इन दोनों का अर्थ एक है, ये बात बताइए ना। अधप्रवृत्त संयत कहो, स्वस्थान अप्रमत संयत कहो, या एकांत अनुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित संयत कहो, इनका अर्थ एक ही है। प्रवृत्त करना, उसको रुकना पड़ेगा अभी हमको। संयदा संयदस्य गुण श्रेणी कालो संकेज गुणो, उससे संयता संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनवो सदा देत होड़ो। विनोद भाई।